ओम शांति। मुझे जो टॉपिक मिला है होमवर्क व्यर्थ और नेगेटिव पर कैसे जीत पाए, तो व्यर्थ और नेगेटिव ये संकल्प से संबंधित है। हमारे जो भी दिनचर्या है, दिनचर्या में हम देखते हैं कि रोज हम कितने समर्थ रहे थे और कितने व्यर्थ रहे थे, ये अपनी चेकिंग बाबा ने बोला है हर मुरली में। एक स्लोगन लिखा हुआ है कि बीती को बिंदी लगाकर वर्तमान को चेक करो और भविष्य उज्जवल बनाओ। तो इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे आज। तो व्यर्थ संकल्प तो और निगेटिव संकल्प तो भूतकाल से संबंधित होते हैं और वर्तमान से और भविष्य काल से, तीनों काल से ये संबंधित होते हैं। तो जैसे एक कहानी के माध्यम से थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। एक किसान होता है, रोड के किनारे उसका मकान होता है और उसके पास एक कुत्ता भी होता है। तो रास्ते पर मकान होने के कारण गाड़ियां आती जाती रहती है, तो कुत्ता दौड़ लगाते ही रहता है, गाड़ियों के पीछे भागते रहता है। तो पड़ोसी के मन में आखिर एक विचार आता है, पूछ लेता है वो कुत्ता का जो मालिक होता है उससे, आपका कुत्ता कब तक भागता रहेगा, क्या आखिर एक दिन गाड़ी को पकड़ ही लेगा? तो कुत्ते का जो मालिक होता है वो जवाब देता है, ये तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन एक जब पकड़ लेगा तो वो उत्तर देता है, जब पकड़ लेगा गाड़ी को तो गाड़ी का करेगा क्या, वो उत्तर देता है मकान मालिक। समझे ना प्रश्न? पहला प्रश्न था कि जो कुत्ता गाड़ी के पीछे भागता था, हाँ, तो उसके पड़ोसी ने पूछ लिया कि गाड़ी को आखिर एक दिन पकड़ ही लेगा क्या आपका कुत्ता, पकड़ पाएगा या नहीं, एक प्रश्न है ना। और दूसरा फिर उत्तर देता है जो जिस कुत्ते का जो मालिक होता है, पकड़ लेगा एक दिन तो पकड़ ही लेगा, लेकिन पकड़ने के बाद करेगा क्या गाड़ी का। तो ये दोनों ही प्रश्न निरर्थक है, व्यर्थ है ना, क्योंकि कुत्ता पकड़ तो नहीं सकता गाड़ी को। और तो इस प्रकार हमारे दिन में जो बातें चलती हैं हमारी निरर्थक होती है, वो व्यर्थ में आ जाती है। तो सुनी सुनाई बातों पर हम ज्यादा आ जाते हैं, कि किसी ने कुछ एक बात सुनाई, कि कुछ समाचार सुना दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो उस बात को पकड़ के हम अपना अपना अनुमान लगा के उसको बढ़ा देते हैं और वो बात बढ़ती चली जाती है। तो ये है व्यर्थ। तो व्यर्थ को बाबा ने कहा है कि एक व्यर्थ संकल्प चलाना भी एक मतलब श्रीमत के खिलाफ है। क्योंकि हम सभी संगम युग के कौन है, महान आत्मा है, बाबा ने बोला है। अगर और बाबा दादा ने जन्म से ही वरदान दिया हुआ है, कौन सा, दिव्य बुद्धि का, दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र का, और हमारे संकल्पों में फिर पावर आ जाती है और साथ साथ ब्रह्मचर्य पवित्रता की शक्ति। तो अगर एक भी अगर व्यर्थ करते हैं तो उसका प्रभाव पूरे संसार को भुगतना पड़ता है। बाबा ने बोला है कि आप अगर व्यर्थ चलाते हैं तो विश्व पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो जन्मते ही हम दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र मिला हुआ है, फिर अगर हम अभी वर्तमान में अगर चेक करें, क्या उस अनुसार हमारे संकल्प चलते हैं, कि बाप दादा ने जो श्रीमत दी है, श्रीमत प्रमाण जो दिनचर्या है, तो उस प्रमाण हमारे संकल्प चलते हैं, या कुछ कमी रह जाती है या व्यर्थ चलते हैं? तो देखा जाता है कि व्यर्थ तो रहता ही है कुछ ना कुछ। तो इस पर हम कैसे जीत पाए उसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। तो उसके पहले एक स्टोरी नहीं, पहले क्यों आते, व्यर्थ आने का कारण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। तो एक होती है कि कोई घटना हो जाती है, भूतकाल में घट गई है, तो वो कुछ ऐसी घटना है कि उसके कारण हमको कुछ नुकसान हो गया है, तो हम उस पर ज्यादा चिंतन करते हैं, क्योंकि ऐसा जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, और उसके कारण हमारे आगे के जीवन में प्रॉब्लम आ गई या प्रभाव पड़ा, तो वो सोच सोच के भी हम एक निगेटिव अपने मन में तैयार कर लेते हैं। तो उसका कारण क्या होता है कि ये जो एक संकल्प को बीज भी कहा गया है, और बीज का समर्थ है तो उसका परिणाम भी अच्छा होगा, अगर बीज कमजोर है तो परिणाम भी कमजोर होगा। तो भूतकाल में अगर कोई ऐसी घटना हो गई, उस पर हम दिनों दिन इस पर ही व्यर्थ में रहते हैं, तो वह फिर धीरे धीरे टेंशन का रूप ले लेता है, क्योंकि कहते हैं कि एक मिनट में 25 से 30 संकल्प चलते हैं, उसमें से पॉजिटिव सिर्फ 4-5 संकल्प ही होते, बाकी सब निरर्थक और व्यर्थ निगेटिव होते, तो उसके कारण टेंशन होता है। टेंशन का फिर आगे का रूप होता है डिप्रेशन, पहले तो व्यर्थ चलता है, व्यर्थ ही टेंशन में बदल जाता है, टेंशन ही फिर डिप्रेशन में, तो इसकी भी डिप्रेशन में गए तो फिर उधर पीछे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये बात, लेकिन ब्राह्मणों में ऐसा नहीं है, वो बाहर की दुनिया में ये ज्यादा होता है, कोई अगर स्कूल में कोई बच्चे होते हैं ना, कभी फेल हो जाते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं, या कुछ परसेंटेज कम आ गए तो ये सोच सोच के बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो ये व्यर्थ संकल्प उसका बीज होता है। तो कहते हैं कि संकल्प से हमारे विचार आते हैं, और विचार से शब्द बनता है, और शब्द भी वो कर्म में आते हैं, तो वो मतलब परिणाम कर्म बन जाते हैं, शब्द ही कर्म बन जाते हैं, और कर्म ही वो संस्कार बन जाते हैं, और संस्कार से ही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। तो संकल्प ही मेन फाउंडेशन है, हम अपने आप को कैसा अच्छा बनाए या ऊंचा उठाए। तो जैसे पहला देखा कि भूतकाल की जो कोई घटना है उसके कारण हम ये व्यर्थ चलाते हैं। दूसरा है कि किसी ने कुछ बोल दिया सेवा करते हुए, या पहले कुछ बोल दिया, उसके ऊपर ही हमारा व्यर्थ चलते ही रहता है। कभी कभी व्यर्थ ऐसा चलता है कि वो स्टॉप ही नहीं होता, तो फास्ट नहीं होता, भले याद है कि नहीं करना चाहिए, मुरली भी याद है, श्रीमद प्रमाण भी करना है, फिर भी स्टॉप नहीं कर पाती, क्योंकि उतना पावर नहीं है, शक्ति नहीं है कि समर्थ करने की। फिर तीसरा है कि परचिंतन, प्रदर्शन और परमत। बाबा बोलते झरमुई झगमुई, तो इसके कारण भी हमारा व्यर्थ चलता है। जैसे कहा गया है कि बुरा न सुनो, बुरा न देखो, बुरा न करो, बुरा न सोचो, बुरा न बोलो, तो ये एक श्रीमत है, लेकिन इस श्रीमत पर को हम श्रीमत को फॉलो नहीं करते, इसलिए भी ये व्यर्थ चलता है। तो परचिंतन में देखा गया है कि कुछ एक बात आ गई कि किसी ने कुछ उल्टा किया, तो फिर आपस में कुछ मिल जाती है, तो फिर इस पर हम और भी उसका व्यर्थ परचिंतन कर देते हैं, और वो बात बड़ी हो जाती है, माल मसाला भर देते हैं, और क्या होता है कि बात थोड़ी होती है लेकिन वो बड़ा बड़ा के फिर दूर तक चली जाती है, तो उसका दूसरा रूप ले लेती है, छोटी सी बात होती है। तो ये परचिंतन, प्रदर्शन माना दूसरों के दोष देखना कि इसमें ये कमियां हैं, इसमें कुछ है, तो ये ढूंढने का, तो इससे भी हमारा व्यर्थ चलता है। और प्रदर्शन, परचिंतन माना दूसरों के प्रति सोच, और परमत दूसरों की मत पर चलना, तो ये पर काटने बाबा ने मुरली बोला है, तीन पर काटो और एक पर जोड़ो, कौन सा? परोपकार। तो परोपकार कर की भावना हमारे अंदर रही तो ये व्यर्थ नहीं चलेगा। फिर देखा गया कि व्यर्थ चलने के जो कारण है उसमें सफलता न मिलने के कारण, कभी सफलता नहीं मिलती क्योंकि हमने जो टारगेट रखा है, लक्ष्य रखा है उसमें, तो उसके कारण हम अब हमारे अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और उसके कारण हमारा व्यर्थ चलता है, निगेटिव चलता है। तो ये और एक कारण है। और दूसरा है अनुमान लगाना, डाउट संशय करना, तो इससे भी हमारा व्यर्थ चलते हैं। तो इस प्रकार अनेक कारण हो सकते हैं, जैसे क्लास में मोबाइल की घंटी बज गई तो एक तो बज तो गई, अभी कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हमारा संकल्प उधर चला जाता है, मुरली सुनते सुनते हम उधर भी देखना चालू कर देते किसने किसका मोबाइल है तो ये भी एक व्यर्थ चल जाते, उस तो कौन है, कहाँ से, ऐसा उसके प्रति भी गलत संकल्प चला देते कि कहाँ इनको सिखाया नहीं गया ऐसा वैसा, तो तब तक दो तीन पॉइंट मुरली की चली जाती है तो एक व्यर्थ इस प्रकार से आता है। अभी कभी कभी डायमंड हॉल में भी देखा होगा, सुना होगा कि ऐसे होते हैं, और कोई बच्चा भी आ जाता है, रो देता है बीच में ऐसे हुआ होता है कि वैसे श्रीमत है कि बच्चों को नहीं लाना है, तीन साल से कम उम्र की बच्चों को, लेकिन ला देते वो तो फिर उस पर सोच चलता है कि किसने लाया, फिर ज्यादातर दोस्त टीचर पर चला जाता कि टीचर ने भेजा ही क्यों, ऐसा संकल्प चल जाते व्यर्थ। हम ज्ञानी होते हुए भी ये संकल्प चलते हैं क्योंकि बाबा की श्रीमत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन एक तो दूसरों के निमित्त भी बन जाते हैं हम व्यर्थ चलाने के, तो ऐसा व्यर्थ चलते ही रहते हैं। और क्या कारण है व्यर्थ चलने का? कभी कभी हम सफर करते हैं तो सफर की तैयारी करने में भी, हाँ, कि क्या करेंगे वहां जाके, भविष्य की भी सोचते, बैग भरने में कितना व्यर्थ चलता है ना, हाँ पूरा सोच व्यर्थ। हाँ, और क्या होता है, हाँ, लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो व्यर्थ चलता है। हाँ, खाली मन शैतान का घर कहा गया है, तो खाली मन में ही व्यर्थ चलता है, हाँ, जल्दबाजी में व्यर्थ। हाँ, कोई सहयोग, समय पर सहयोग नहीं मिला तो भी व्यर्थ चलता है। तो ऐसे व्यर्थ संकल्प हमारे दिनचर्या में चलते ही रहते हैं कोई ना कोई। हाँ, वही कुछ बोल दिया अपमानजनक शब्द तो भी हमारा सोच चलता है, या तो उसकी कमी दिखाई देंगे या फिर हमारे अपने को कम समझेंगे, तो ये सोच चलता है व्यर्थ सोच। और निगेटिव तो वैसे ब्राह्मणों में कम है, बाकी कोई कुछ कह देता है कि तुम ये नहीं कर सकते तो ये निगेटिव में आ जाता है, बाकी विकारी संकल्प से ये निगेटिव है, तो ये इससे थोड़ा ब्राह्मणों में कमी देखा गया है। तो बाबा ने व्यर्थ और निगेटिव का ये जो वेस्ट और एक प्रकार का वेट बढ़ाते हैं ना, व्यर्थ माना वेस्ट, तो वेस्ट माना ये बोझ है एक प्रकार का। तो एक तो पिछले जन्मों का तो बोझ है ही, 63 जन्मों से बोझ आत्मा के ऊपर, उसको तो हमको चुक तो करना ही है। अगर हम अभी ब्राह्मण जन्म में कुछ नया बना लेते हैं, हाँ, तो इसका 100 गुना, 100 गुना बोले बाबा, तो 100 गुना और भी एड हो जाता है। तो अभी समय देखते हैं कि कम है और इतना अभी पिछला है, तो कैसे चुक तो करेंगे, तो उस हिसाब से हमें अभी अपने अंदर ये जागृति लानी होगी। वैसे ब्राह्मण तो बने, मुरली भी सुन रहे हैं, लेकिन ये जो एक प्रकार की एक अंधकार या इसको ये कहेंगे कि अज्ञानता भी कहेंगे, वो हमारे अंदर है, समझो हम ये वेस्ट कर रहे हैं खजाने या खाते, तो इसमें हमें जागृति लानी होगी कि अटेंशन रखना पड़ेगा, सजग अवस्था रखनी पड़ेगी कि नहीं ये अभी खाली समय है, तो कुछ पॉजिटिविटी करे या कुछ मुरली चिंतन करे या कुछ अच्छा, इसमें अगर दूसरा करेंगे तो व्यर्थ में चला जाएगा, या कुछ बातें करने में है, या फिर मोबाइल आजकल एक डिजिटल माया कहते तो इसमें चले जाते हैं, तो फिर ये पूरा समय खा जाती है और वेस्ट में चला जाता है। हाँ, क्लास हुई थी ना एक डिजिटल मीडिया, इसमें हमारा व्यर्थ बन जाता है, समय भी जाता है वेस्ट, तो इससे हमें मुक्त बनना है। तो अभी इसके निवारण के ऊपर कुछ, तो व्यर्थ और निगेटिव को निवारण कैसे करेंगे? अभी है सभी, तो अगर चेक करेंगे तो हर एक का अपना अपना हिसाब से होता ही है, लेकिन इसको अब हम कंट्रोल कर सकते हैं, असंभव नहीं है, हर बात संभव है। तो पहला है संकल्प का खजाना, या कहेंगे कि व्यर्थ है वहां समर्थ नहीं हो सकता और समर्थ है वहां व्यर्थ नहीं, तो व्यर्थ को दूर करने के लिए समर्थ संकल्पों का खजाना, हाँ खजाना ही, इस पर हम इससे खजाना बढ़ाएंगे तभी हम इस पर जीत पा सकते हैं। तो ये खजानों की खान क्या है? मुरली, रोज की मुरली। तो मुरली में बाप दादा ने जैसे कहा है कि सुनना, समाना और स्वरूप बन जाना। तो मुरली सुनते तो है सभी, लेकिन समाते कहाँ तक है वो अभी चेकिंग करना पड़ेगा। हाँ, स्वरूप तो फिर स्वरूप बन गए तो फिर तो ये व्यर्थ रहेगा ही नहीं। तो सुन ही लेते तो व्यर्थ आ जाता है, लेकिन जब स्वरूप बन जाते हैं तो ये नहीं होता। और मुरली समाई कहाँ तक, मतलब अपने धारण कहाँ तक की, अगर धारण कर ली तो फिर ये व्यर्थ को जगह नहीं मिलेगी। तो मुरली का मनन चिंतन, तो मनन चिंतन करेंगे तो ये व्यर्थ नहीं आएगा। तो मुरली में जैसे कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, सोमान की पॉइंट या कुछ टॉपिक ले सकते हैं, तो इसमें आप अपने आप को दिनचर्या में बिजी रख सकते हैं। तो इस प्रकार हम मुरली का चिंतन के द्वारा ये अपने अंदर मनन शक्ति द्वारा ये खजाने बढ़ा सकते हैं, और खजाने बढ़ाने से फिर हम अनुभव का भी खजाना बढ़ा सकते हैं, तो इससे हम व्यर्थ से मुक्त हो सकते हैं। फिर दूसरा है सोमान का अभ्यास। तो सोमान कौन सा लेंगे? कोई भी आप ले सकते हैं, क्योंकि पहला सोमान तो यही है कि हम समर्थ आत्मा है और कौन है, पहले ये जागृति जरूरी है कि हम कौन है, कौन सी आत्मा है, क्या बनने वाली आत्मा है ना, हाँ कहाँ से आई है, ये जो है तो ये जो सोमान ले सकते हैं। तो अमृत वेले से जो दिनचर्या बनी हुई है हमारी, बाप दादा ने कहा कि अमृत वेले अवतरित हुए हैं, हम अवतार है, हाँ तो ये अगर स्मृति रहती है तो फिर ये दिनचर्या का जो फाउंडेशन है ये मजबूत बन जाता है और सारा दिन भी अच्छा रहता है। तो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक दिनचर्या में कोई भी हम सोमान का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल्स में भी कर सकते हैं, और जब भी समय मिला ये अभ्यास कर सकते हैं। अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने ड्रिल कराई है कि हर मिनट कोई ना कोई ड्रिल करते रहो, पांच स्वरूप का करो चाहे अपने कोई भी सोमान का अभ्यास करो। तो ये सोमान का अभ्यास अभी चलता ही रहा तो फिर हम ये व्यर्थ संकल्पों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर तीसरा है अपने बुद्धि को एकदम होली हंस बनाना पड़ेगा। होली हंस किसका वाहन है? सरस्वती, नॉलेज फूल का आसन हंस। तो हंस की विशेषता क्या है? मोती चुगना और कंकड़ को दूर कर देना। दूसरे ही नीर और छीर अलग कर देना। और तो परखना, निर्णय करना, और तीसरी भी है एक ग्रहण शक्ति। तीन शक्तियां हैं, विशेषता है होलियंस बुद्धि की। तो हम वो आत्माएं हैं कि हम सच और झूठ को अलग कर सकती है, कर सकते हैं ना। तो अच्छा या बुरा क्या लेना है, तो ये हमारे ऊपर है ना। हंस बुद्धि है तो बुरा चल रहा है तो बुरा में हमें जाना ही नहीं है ना। तो ये हंस बुद्धि के लक्षण है। तो कोई भी अगर निगेटिव बात चल रही है या व्यर्थ बात चल रही है, वहाँ से उड़ जाना, या फिर वहाँ उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना, उसे किनारा कर देना। तो ये हमारे होली वंश बुद्धि की निशानी है। और क्या ग्रहण करना, मतलब कुछ पॉजिटिव है तो हम ले सकते हैं, निगेटिव है तो छोड़ देना है, व्यर्थ को छोड़ देना है। तो ये होली वंश बुद्धि बनना है व्यर्थ को समाप्त करने के लिए। फिर है त्रिकालदर्शी बन के भी हम व्यर्थ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। माना त्रिकालदर्शी माना भूत, भविष्य, वर्तमान। हाँ, तो जो भी संकल्प करना है या बोलना है तो ये सोच के, हाँ, इसका परिणाम क्या होगा, ये तीनों कालों को आगे रख के ही हम अगर हम सोचते बोलते करते तो इसका परिणाम अच्छा होता है। तो त्रिकालदर्शी स्टेज से ही हम व्यर्थ को समाप्त कर सकते हैं। और एक बताया था कि वेट को कम करना है, माना वेस्ट ऐसा है कि उसको फेंका जाता है, जलाया जाता है, वो डस्टबिन के लायक होता है। तो वेस्ट को हमें नहीं रखना है और डस्टबिन में ही डालना है, और वेट कम करना है। यानी पुराने जो हिसाब किताब है, ये वेट कम करेंगे तो हम दौड़ सकेंगे। मतलब रेस में कौन दौड़ सकते हैं ज्यादा, जो पतले मोटे लोग कम दौड़ सकते। तो ये इसका भी है कि व्यर्थ संकल्प का जो वेट है, मोटापन है, इससे दूर रहे। तो इस प्रकार से व्यर्थ संकल्पों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो संकल्प हम आत्मा की रचना है। हाँ, तो संकल्प हम आत्मा की रचना है, तो हम कौन हो गए, रचता हो गए। लेकिन रचता है, लेकिन कौन से संकल्प रचते हम, पॉजिटिव या नेगेटिव, व्यर्थ या समर्थ। तो उस अनुसार फिर पालना भी करनी पड़ती है। अगर समर्थ संकल्प हमारे अंदर आ रहे हैं तो सबको समर्थ ही दिलाते हैं, उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। और असमर्थ संकल्प आते हैं, व्यर्थ है, तो दूसरों को शक्तिहीन बनाते हैं, कमजोर बना देते हैं। और हाँ, हमारा कर्तव्य जो है कि विश्व कल्याण करना है। अभी वर्तमान समय देखो कि दुनिया की आत्माएं दुख और अशांति से तड़प रही है, और हम इधर खान में बैठे हुए हैं, हमारे पास खजाना है और हम बांट नहीं रहे। तो हाँ, तो कहा गया कि जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो स्थूल धन तो तिजोरी में रखते हैं तो वो काम में आ जाता है कभी कभी काम। हाँ, लेकिन ये जो ज्ञान का खजाना है, ये बंद रखेंगे तो ये व्यर्थ कहा गया है। इसको बाबा ने मुरली में कहा है कि अगर अलमारी में खजाने रहते तो ये व्यर्थ के खाते में चला जाता है, क्योंकि यूज नहीं होता। तो सफल करने से ही ये बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से और व्यर्थ को समाप्त करने का, हाँ, सभी बताएंगे। हाँ, बाबा के श्रीमत के अनुसार हम नहीं चलते तो व्यर्थ चलता है। हाँ, मन खाता है तो ये भी एक प्रकार का व्यर्थ है। हाँ, बाबा की जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अवज्ञा करते हैं, तो फिर मन खाता है कि अमृत वेले नहीं उठे, तो फिर संकल्प चलता है, हाँ आज कुछ खाली खालीपन लगता है ना, तो इस प्रकार फिर व्यर्थ चलता है, फिर अपने में हीन भावना आती है, कमी कमजोरी आ जाती है। और हाँ तो दिनचर्या में जो व्यर्थ का जो बोझ पड़ा हुआ है उसको रात्रि में खाली करना पड़ेगा बाबा, तो रात को ही बाबा को, बाबा ने मुरली में कई मुरलियों में कहा कि आधा घंटा योग करो, और आधा घंटा योग करेंगे तो फिर उसमें अपना जो भी पोता मेल है वो दे देंगे, फिर हल्के हो जाएंगे। और हाँ, विधि को बिंदी कर आगे बढ़ो, तो हाँ, तो जब आप स्मृति में आ गया माना ज्योत जल गई, जागृति हो गई, तो उस समय से ही हम सोचे कि सारा दिन हमें समर्थ करना है, तो उस समर्थ ही चलते रहेगा। और इसमें हाँ, सारा दिन अव्यक्त स्थिति है तो अगला दिन भी अव्यक्त मिलन हो, कनेक्टेड है, एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हो गए कि दोनों नहीं चल सकता एक के बिना। तो इसमें तो फिर पॉइंट कहाँ है? हाँ, तो अभी अभी याद है तो अभी से चालू करना पड़ेगा। जैसे जैसे ये ड्रामा का एंड है क्या? 5000 वर्ष का चक्र है, कितने चक्र हुए? अनेक चक्र हुए। उसी प्रकार ये भी चक्र है कि इसका पॉइंट नहीं है, जब से याद आया आपको वही वही स्टार्टिंग कहेंगे, जब जागे सो सवेरा, तो ये बात इसमें लागू होती। सही सही, दिल में बाबा है तो फिर व्यर्थ है ही नहीं। तो इस प्रकार बाबा की जो मुरलियां हैं वही, तो मेन तो फाउंडेशन ये है कि मुरली मुरली में जो भी बोला है बाबा ने श्रीमत, एक एक श्रीमत पर विचार करते रहो तो ये सब व्यर्थ रहेगा ही नहीं। कोई भी पॉइंट ले लो, मेन है मुरली याद रहना चाहिए। मुरली याद नहीं रहने के कारण समाते नहीं है, है ना? हाँ, एक दो पॉइंट तो रहती है। हाँ हाँ, चिंतन
संतुष्ट होंगे, इच्छाएं कम हो जाएंगी, संतुष्टता जो है सबसे बड़ी चीज है।
तो मेन तो है कि बाबा की याद और श्रीमद् और मुरली, तो ये है तो सारा दिन ठीक ही है, तो इसमें ही हमें अटेंशन देना है। हाँ, तो मनन चिंतन एक प्रकार का अनुभव हो जाता है, अनुभव जब हो जाता है आत्मा को तो वो उसमें भूलता नहीं। नहीं नहीं, मैं व्यर्थ आने का कारण एक ही है, सीधी सीधी बात, सब बात की एक बात, देह अभिमान में है हम। अगर देही अभिमान स्थिति है तो ये व्यर्थ है ही नहीं, है ना? तो हम देह अभिमान में आने के कारण ही ये सब व्यर्थ और निगेटिव होता है, बाकी हाँ। तो इस प्रकार से हम कि अपने आप को चेक करना है बस, और चेंज करना है। समाप्ति वर्ष अर्थात हमारे व्यर्थ की समाप्ति करना है, क्योंकि हमारा बाबा ने कहा है कि समय नजदीक आ गया है और हमें संपूर्ण बनना है, और हमें अगले पल का अपने जीवन का पता नहीं है कब क्या हो जाएगा। कुछ घटना हो गई तो हम रहेंगे नहीं, लेकिन जितना अभी जमा किया है उतना ही जाएगा, है ना? तो इसके लिए बाबा ने सभी को दिया है कि संपूर्ण बनो, और अभी समाप्ति का वर्ष है तो अपना चुक्त करो। तो अभी आप देख ही रहे हैं कि बाबा ने कहा था कि अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, लेकिन अभी हम समझ सकते हैं कि टू लेट का बोर्ड लग चुका है। क्यों लग चुका है? क्योंकि अब डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे बाबा से, जो स्थूल मिल तो टू लेट का बोर्ड लग चुका है। तो अभी हमें वो सोचना है कि अभी समय बहुत कम है। अच्छा, ओम शांति।
जैसा सोचोगे तुम जैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का, कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे, जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे।